एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे जर्मन दार्शनिक की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जिनका नाम शायद उतना आम न हो, पर जिनके विचार बहुत गहरे और आज भी प्रासंगिक हैं। फ्रेडरिक विलहेल्म जोसेफ वॉन शेलिंग।
नमस्कार।
हाँ बिल्कुल, शेलिंग वो जर्मन आदर्शवाद और रोमांटिसिज्म के दौर के एक बहुत ही कह सकते हैं अहम विचारक थे। अक्सर लोग उन्हें फिख्टे या हेगल के बीच का एक लिंक मानते हैं।
हाँ, एक पुल की तरह।
एक पुल, बिल्कुल। लेकिन उनकी अपनी सोच वो बहुत मौलिक थी और महत्वाकांक्षी भी, मतलब दर्शन, प्रकृति और कला, इन सबको एक साथ समझने की एक बड़ी कोशिश।
और शायद यही बात उन्हें इतनी दिलचस्प बनाती है ना। ऐसा लगता है जैसे वो उस वक्त की सोच में जो दरारें थीं उन्हें भरने की कोशिश कर रहे थे, जैसे मन और प्रकृति के बीच की दूरी।
हाँ, स्वतंत्रता और जरूरत के बीच का वो तनाव, यहाँ तक कि तर्क और मिथक के बीच का फासला, ये सवाल तो आज भी है।
बिल्कुल सही कहा। शेलिंग ने उस सोच को सीधे चुनौती दी जो प्रकृति को बस एक बेजान मशीन की तरह देखती थी। उनकी नजर में तो प्रकृति जीती जागती थी, एक गतिशील शक्ति। क्या कहा था उन्होंने? दृश्यमान आत्मा।
दृश्यमान आत्मा, ये सुनने में कितना अलग लगता है। उस समय के लिए तो ये वाकई क्रांतिकारी रहा होगा।
हाँ, और इसका असर सिर्फ फलसफे की बहसों तक नहीं रहा। आप देखिए, बाद में कीर्किगार्ड जैसे अस्तित्ववादी विचारक,
हाँ,
कार्ल यंग जैसे मनोविश्लेषक, और यहां तक कि शुरुआती दौर के जो पर्यावरण चिंतक थे, उन पर भी शेलिंग का प्रभाव दिखता है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कई बहसों के बीज बो दिए थे जो बाद में पनपी।
उन्होंने जैसे तर्क की दुनिया से मोह भंग को स्वीकार नहीं किया। उनके लिए दुनिया सिर्फ तर्क नहीं थी, बल्कि आत्मा, रचनात्मकता, स्वतंत्रता, इनका एक बड़ा मंच थी।
सही। तो आज इस चर्चा में हम शेलिंग के जीवन, उनके दर्शन और उनके प्रभाव को समझने के लिए अलग अलग स्रोतों का सहारा ले रहे हैं।
हाँ, और हमारा मकसद यही है कि उनकी इस यात्रा को, उनके मुख्य विचारों की परतों को खोले और समझे कि आज वो हमारे लिए क्यों और कैसे मायने रखते हैं।
तो शुरुआत उनके समय से करते हैं, वो दौर जब शेलिंग जी रहे थे, 1775 से 1854। यूरोप के लिए बहुत उथल पुथल का समय था वो।
बिल्कुल, फ्रांसीसी क्रांति हो चुकी थी, उसके असर थे, नेपोलियन की युद्ध चल रहे थे, जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना उभर रही थी। ये सब चीजें उनके विचारों की पृष्ठभूमि तो बनाई रही होंगी।
यकीनन, और बौद्धिक माहौल भी कम गर्म नहीं था। जर्मन आदर्शवाद का बोलबाला था और सब लोग खासकर इमैनुअल कांट के दर्शन से जूझ रहे थे।
हाँ, कांट का वो फिनोमिना और नूमिना वाला विभाजन कि हम दुनिया को बस अपने अनुभव से जानते हैं, वो अपने आप में कैसी है ये शायद कभी नहीं जान सकते।
बिल्कुल, शेलिंग और उनके समय के दूसरे विचारक इसी गुत्थी को सुलझाने और इससे आगे जाने की कोशिश में लगे थे।
कांट का असर तो था ही, और किन लोगों का प्रभाव रहा उन पर?
स्पिनोजा का काफी असर था, उनके अद्वैतवाद का, मतलब ये विचार कि सब कुछ एक ही परम सत्ता का हिस्सा है, और योहान गॉटलिब फिक्टे का भी, जिनका दर्शन स्व या मैं पर केंद्रित था। इन सब ने शेलिंग के शुरुआती विचारों को दिशा दी।
और वो इस सफर में अकेले भी नहीं थे, उनके कॉलेज के दिनों के साथी कौन थे? हेगेल और होल्डरलिन। क्या कमाल की तिकड़ी रही होगी।
हाँ, वो ट्यूबिंगन की मशहूर तिकड़ी। बाद में फिर शेलिंग जेना में रोमांटिक सर्कल के भी केंद्र में आ गए। वहां फ्रेडरिक श्लेगल, नोवालिस जैसे बड़े नाम थे, गोटे जैसे साहित्य के महारथी, श्लेयरमाकर जैसे धर्मशास्त्री, इन सबसे उनका मिलना जुलना था। मतलब विचारों के लेन देन के लिए एक असाधारण माहौल था।
चलिए, अब थोड़ा उनकी निजी जिंदगी और उनके सफर पर आते हैं। पूरा नाम फ्रेडरिक विलहेम जोसेफ वॉन शेलिंग, जन्म 1775 जर्मनी के लियोनबर्ग में।
और बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा, एक प्रोटेस्टेंट पादरी के बेटे थे। कहते हैं कि टीनेज तक आते आते हीब्रू, अरबी जैसी पुरानी भाषाएं और कई नई जबानें सीख ली थी। और सोचिए, सिर्फ 15 साल की उम्र में ट्यूबिंगन के उस प्रतिष्ठित सेमिनरी में दाखिला, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी।
और वहीं वो मुलाकात हुई हेगेल और होल्डरलिन से। तीनों नौजवान, फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित, ग्रीक संस्कृति के दीवाने। वो किस्सा भी मशहूर है ना कि उन्होंने मिलकर सेमिनरी में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था।
हाँ बिल्कुल, उस दौर की क्रांतिकारी भावना का प्रतीक। खैर, उनके जीवन में कई बड़े मोड़ आए। 1790 के दशक में जब वो फिख्टे के दर्शन से रूबरू हुए, वो एक अहम मोड़ था। वहीं से उनका अपना स्वतंत्र दार्शनिक सफर शुरू हुआ।
और फिर 1798 में सिर्फ 23 साल की उम्र में जैना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, ये तो बहुत बड़ी बात थी।
बहुत बड़ी बात। जेना उस समय जर्मनी का बौद्धिक केंद्र था, और वहीं शेलिंग ने अपना वो मशहूर नेचर फिलॉसफी यानी प्रकृति दर्शन विकसित किया। वो एकदम से रोमांटिक आंदोलन के दार्शनिक हीरो बन गए। लेकिन जिंदगी में फिर एक बड़ा निजी मोड़ भी आया।
आप कैरोलिन श्लेगल की बात कर रही हैं, उनका विवाह और फिर?
हाँ, 1803 में उन्होंने कैरोलिन से शादी की। कैरोलिन खुद एक असाधारण शख्सियत थी। ऑगस्ट विल्हेम श्लेगल की पूर्व पत्नी, शेलिंग से उम्र में 12 साल बड़ी, बेहद बुद्धिमान और रोमांटिक सर्कल में काफी प्रभावशाली। उनका रिश्ता बहुत गहरा था, बौद्धिक भी भावनात्मक भी। हालांकि इस शादी पर थोड़ा विवाद भी हुआ उस समय।
लेकिन फिर 1809 में कैरोलिन की अचानक मृत्यु, इसने तो शेलिंग को झुकझोड़ कर रख दिया होगा।
बिल्कुल, ये उनके जीवन का शायद सबसे दुखद मोड़ था, और ऐसा लगता है कि इस निजी त्रासदी ने उनके दर्शन को भी एक नई दिशा दी, ज्यादा गहरी, ज्यादा अस्तित्वगत।
हाँ, मैंने भी पढ़ा है कि इसके बाद उनके लेखन में स्वतंत्रता, बुराई, इंसान के अस्तित्व के जो अंधेरे पहलू हैं, वो विषय ज्यादा उभर कर सामने आए।
सही।
और इसी दौर के आसपास हेगेल के साथ उनकी पुरानी दोस्ती में भी कड़वाहट आने लगी। जो कभी गहरे दोस्त थे, बौद्धिक साथी थे, वो अब एक तरह से प्रतिद्वंद्वी बन गए थे, खासकर जब हेगेल ने अपनी किताब फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट में बिना नाम लिए शेलिंग के विचारों की आलोचना कर दी।
ये दोस्ती का प्रतिद्वंद्विता में बदलना, विचारों के इतिहास में ऐसी कहानियां दुखद होती हैं। खैर, उनका अकादमिक करियर तो चलता रहा। जेना, वुर्जबर्ग, म्यूनिक, कई जगह पढ़ाया उन्होंने, और आखिर में 1841 में उन्हें बर्लिन बुलाया गया।
हाँ, ये भी एक दिलचस्प वाक्या है। हेगेल की मौत हो चुकी थी और उनके जो फॉलोअर थे, युवा हेगेलियन, वो काफी प्रभावशाली हो गए थे। तो शेलिंग को एक तरह से बुलाया गया था कि वो आकर हेगेलियन दर्शन के इस बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करें। उनके पूरे दार्शनिक सफर को देखें तो कई चरण दिखते हैं। फिक्स्चे से प्रभावित शुरुआती दौर, फिर प्रकृति दर्शन, फिर वो तादात्म्य दर्शन, और आखिर में उनका वो सकारात्मक दर्शन। चलिए उनके कुछ बड़े विचारों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये आइडेंटिटेट्स फिलोसोफी या तादात्म्य दर्शन, ये क्या था असल में?
ये शेलिंग के दर्शन का कह सकते हैं दिल था। उनका मूल तर्क ये था कि मन यानी हमारी चेतना, विचार और प्रकृति यानी भौतिक दुनिया, पदार्थ, ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये एक ही परम वास्तविकता के, जिसे वो निरपेक्ष, द एब्सोल्यूट कहते थे, दो पहलू हैं। जैसे?
जैसे आपने पहले कहा, लहरें और समुंदर।
हाँ, बिल्कुल वैसा ही। अलग दिखते हैं पर हैं एक ही। उनके लिए प्रकृति क्या थी? सोती हुई आत्मा। और आत्मा वो प्रकृति जो अपने बारे में जागरूक हो गई है। ये मन और शरीर के द्वैत की जो सदियों पुरानी समस्या थी, उसका एक बहुत ही मौलिक समाधान था।
और ये प्रकृति को मशीन मानने वाली सोच से कितना अलग है। उनका जो नेचर फिलॉसफी या प्रकृति दर्शन है, वो तो जैसे प्रकृति में फिर से जान डाल देता है।
बिल्कुल, ये शायद उनका सबसे क्रांतिकारी काम था उस दौर में, जब डेकार्त और न्यूटन के प्रभाव में सब प्रकृति को कलपुर्जों का जोड़ मान रहे थे। शेलिंग ने कहा, नहीं, प्रकृति तो जीती जागती है, सांस लेती है, खुद को बनाती संवारती है, एक दृश्यमान आत्मा, और ये लगातार विकसित हो रही है ध्रुवीय शक्तियों के जरिए, जैसे चुंबकत्व है, बिजली है, इनके जरिए वो चेतना की ओर बढ़ रही है।
और ये सोच आज कितनी जरूरी लगती है जब हम पर्यावरण और इकोलॉजी की बात करते हैं। उनकी वो किताब आइडियाज फॉर अ फिलॉसफी ऑफ नेचर इसी पर थी।
हाँ, 1797 की वो किताब इसी विचार को सामने लाती है। प्रकृति को इस तरह जीवित देखने के बाद फिर सवाल उठता है कि इंसान की चेतना इसी प्रकृति से कैसे पैदा होती है, कैसे विकसित होती है।
यहीं से उनका वो ट्रांसेंडेंटल आदर्शवाद का विचार आता है।
हाँ, उनकी 1800 की किताब सिस्टम ऑफ ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म इसी सवाल से जूझती है। वो चेतना के विकास की पूरी कहानी बताने की कोशिश करते हैं, कैसे हम साधारण सी संवेदना से शुरू करके आत्मचेतना तक पहुंचते हैं, और फिर सबसे ऊपर कलात्मक सृजन तक। और यहां वो एक बहुत ही, कह सकते हैं, चौंकाने वाला नतीजा निकालते हैं।
वो क्या? मुझे हमेशा ये बात बड़ी दिलचस्प लगती है कि शेलिंग ने कला को दर्शन से भी ऊंचा दर्जा कैसे दे दिया। क्या इसलिए कि कला वो महसूस करा सकती है जो तर्क सिर्फ समझा सकता है?
आपने बिल्कुल सही पकड़ा। शेलिंग का मानना था कि एक कलाकृति में वो अचेतन रचनात्मक शक्ति झलकती है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। कला में आप स्वतंत्रता यानी कलाकार की अपनी रचना, और जरूरत यानी प्रकृति के नियम, इन दोनों की एकता को सीधे अनुभव करते हैं। जबकि दर्शन इसी एकता को बस अवधारणाओं में बांधने की कोशिश करता रह जाता है। तो एक तरह से कलाकारी असली दार्शनिक है, वो अनंत को सीमित में उतार लाता है। उनकी रचना फिलॉसफी ऑफ आर्ट इसी पर है।
ये तो कमाल का नजरिया है, लेकिन फिर उनके दर्शन में एक और परत जुड़ती है जो थोड़ी गहरी है, शायद कुछ अंधेरी भी, मानवीय स्वतंत्रता और बुराई का सवाल। आपने कहा था कैरोलिन की मृत्यु के बाद ये और गहरा हुआ।
हाँ, निश्चित रूप से। उनकी 1809 की किताब फिलोसॉफिकल इंक्वायरीज इन टू द नेचर ऑफ ह्यूमन फ्रीडम, इसे कई लोग उनकी सबसे स्थायी और प्रभावशाली रचना मानते हैं। यहाँ वो बुनियादी सवाल उठाते हैं कि आखिर बुराई आती कहाँ से है, और उनका जवाब थोड़ा परेशान करने वाला है। वो कहते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता के लिए सिर्फ अच्छा चुनने की आज़ादी काफी नहीं है।
मतलब
ये कि ईश्वर और इंसान दोनों के अंदर एक गहरा तर्क से परे एक अंधेरा आधार, ग्राउंड होना चाहिए, एक तरह की मौलिक इच्छा या कह लीजिए अराजकता की संभावना, जहां से अच्छाई और बुराई दोनों निकल सकें।
यानी बिना अंधेरे के उजाले का कोई वजूद नहीं, बिना बुराई करने की संभावना के चुनने की आज़ादी का कोई मतलब नहीं।
ये तो बहुत जटिल और सोचने पर मजबूर करने वाला विचार है।
बिल्कुल,
और इसी विचार ने बाद में किर्केगार्ड जैसे अस्तित्ववादी विचारकों को बहुत गहराई से छुआ। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि स्वतंत्रता क्या सिर्फ एक तर्कसंगत चुनाव है, या कुछ और भी गहरा, ज्यादा खतरनाक है। इसी दिशा में उनका जो बात का दर्शन है, जिसे सकारात्मक दर्शन कहते हैं, वो आगे बढ़ता है।
ये सकारात्मक दर्शन उनके पहले के नकारात्मक दर्शन से कैसे अलग था? नकारात्मक से उनका मतलब तार्किक या वैचारिक था?
हाँ, नकारात्मक दर्शन जहाँ तर्क और अवधारणाओं पर टिका था, वहीं सकारात्मक दर्शन का फोकस वास्तविक अस्तित्व पर था, इच्छा पर, मिथक पर, यहाँ तक कि ईश्वरीय रहस्योद्घाटन पर। ये जैसे तर्क की सीमाओं से आगे जाने की कोशिश थी। उनकी वो अधूरी किताब है ना, द एजेस ऑफ द वर्ल्ड, वो इसी दौर की रचना है। उसमें वो इतिहास को ईश्वर के खुद को प्रकट करने की कहानी की तरह देखना चाह रहे थे। ये सब विचार कहीं ना कहीं अस्तित्ववाद के लिए जमीन तैयार कर रहे थे।
अच्छा, अब अगर हम शेलिंग की तुलना उनके दो सबसे बड़े समकालीनों फिक्टे और हेगेल से करें, तो मुख्य अंतर क्या नजर आते हैं? पहले फिक्टे को लें।
फिक्टे का पूरा दर्शन एक तरह से व्यक्ति के स्व या मैं से शुरू होता था। वो कोशिश करते थे कि इसी मैं से पूरी दुनिया को समझा जाए। शेलिंग ने कहा कि ये अधूरा है, दर्शन को सिर्फ स्व यानी व्यक्तिपरक को नहीं, बल्कि दुनिया यानी वस्तुनिष्ठ को भी बराबर का महत्व देना होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही परम सत्य के हिस्से हैं।
और हेगेल, जिनके साथ उनकी इतनी गहरी दोस्ती थी जो बाद में प्रतिद्वंद्विता में बदल गई, उनके दर्शन में और शेलिंग के दर्शन में क्या बुनियादी फर्क था?
हेगेल का दर्शन कह सकते हैं तर्क की भव्य इमारत थी, एक विशाल सुसंगत प्रणाली जहां सब कुछ द्वंद्वात्मकता यानी वाद, प्रतिवाद और संवाद के जरिए तार्किक रूप से विकसित होता है और अंत में निरपेक्ष यानी शुद्ध विचार तक पहुंचता है। हेगेल के लिए मूल मंत्र था, जो तर्कसंगत है वही वास्तविक है।
और शेलिंग?
शेलिंग खासकर अपने बाद के दौर में उन चीजों के लिए जगह बना रहे थे जो तर्क से पहले आती हैं या तर्क के दायरे से बाहर हैं, जैसे अस्तित्व, इच्छा, वो अंधकारमय आधार जिसकी हमने बात की, मिथक। उनके निरपेक्ष में एक रहस्य था, एक अस्तित्वगत गहराई थी, जो हेगेल के शुद्ध तार्किक निरपेक्ष से बहुत अलग थी। और यहीं पर हेगेल की वो मशहूर आलोचना आती है,
वो रात जिसमें सारी गायें काली होती हैं। हाँ, ये मैंने सुना है। हेगेल का क्या मतलब था इससे? मजाक उड़ा रहे थे वो?
हाँ, एक तरह का कटाक्ष था। हेगेल का कहना था कि शेलिंग का निरपेक्ष इतना अविभाजित, इतना अमूर्त है कि उसमें वास्तविकता की जो विविधता है, जो तर्क संगत संरचना है, वो सब खो जाती है। जैसे रात के घने अंधेरे में सब गायें एक जैसी काली दिखती हैं, कोई फर्क नजर नहीं आता। हेगेल ने यह भी ताना मारा था कि शेलिंग ने अपनी दार्शनिक शिक्षा सार्वजनिक रूप से की, यानी उनमें वो व्यवस्थित कठोरता नहीं थी, वो अपने विचार बदलते रहते थे।
मैं उनके काम को फिर से खोजा गया और उसकी अहमियत को पहचाना गया।
किन किन विचारधाराओं पर उनका असर साफ दिखता है? रोमांटिसिज्म के तो वो मुख्य दार्शनिक आवाज थे ही।
वो तो थे ही, फिर अस्तित्ववाद पर उनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। सोरेन किर्केगार्ड, याद है हमने बात की थी कि वो बर्लिन में उनके लेक्चर सुनने गए थे?
हाँ।
किर्केगार्ड ने स्वतंत्रता, चिंता, एंग्स्ट और तर्क से परे जाकर विश्वास करने जैसे विचारों के लिए शेलिंग से बहुत कुछ लिया। मार्टिन हाइडेगर ने भी शेलिंग पर काफी विस्तार से लिखा और पढ़ाया।
और मनोविश्लेषण में भी उनका जिक्र आता है, कार्ल यूंग के संदर्भ में।
हाँ, युंग को शेलिंग के अचेतन के विचार में, मूल रूपों की उनकी समझ में और मिथकों को गहरी सच्चाई की अभिव्यक्ति मानने वाले नज़रिए में काफ़ी कुछ अपने काम का लगा। इसके अलावा प्रकृति के बारे में उनके विचारों ने रोमांटिक विज्ञान और शुरुआती दौर की जो पारिस्थितिकी सोच थी उसे भी प्रभावित किया।
तो आज 21वीं सदी में शेलिंग हमारे लिए कितने प्रासंगिक हैं? क्या उनके विचार आज भी मायने रखते हैं?
मेरे ख्याल से तो पहले से भी ज्यादा। सोचिए, प्रकृति को एक मशीन की तरह नहीं बल्कि एक जीवित आपस में जुड़ी हुई इकाई के रूप में देखना, यह नजरिया आज पर्यावरण संकट के दौर में कितना जरूरी है। और सिर्फ तकनीकी या यांत्रिक तर्क की जो सीमाएं हैं उनकी पहचान शेलिंग ने बहुत पहले कर ली थी, वो आज भी बहुत महत्वपूर्ण है।
और कला और मिथक को समझने के उनके तरीके, क्या वो आज भी हमें कुछ सिखा सकते हैं?
बिल्कुल, वो हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया को पूरी तरह समझने के लिए सिर्फ विज्ञान और तर्क काफी नहीं है, हमें कला की, कल्पना की, मिथकों की भी जरूरत है। उनके विचार आज भी पर्यावरण दर्शन में, प्रक्रिया दर्शन प्रोसेस फिलॉसफी में गूंजते हैं। यहां तक कि स्लावो जिजेक जैसे समकालीन विचारक भी स्वतंत्रता और बुराई पर शेलिंग के विश्लेषण का इस्तेमाल आज की राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक गुत्थियों को समझने के लिए करते हैं।
तो शायद उनका असली महत्व तैयार जवाब देने में नहीं बल्कि वो गहरे सवाल उठाने में है, है ना? मन और दुनिया के बीच, स्वतंत्रता और प्रकृति के बीच, तर्क और अस्तित्व के बीच जो तनाव भरा रिश्ता है उसे कुरेदने में।
बिल्कुल सही कहा। और जिस ईमानदारी से वो नई चीजें सीखने पर अपने विचारों को बदलते रहे, विकसित करते रहे, वो भी अपने आप में दर्शन करने के तरीके का एक मॉडल है।
चलिए उनके कुछ मशहूर कथनों को याद करते हैं जो उनके विचारों की झलक देते हैं। पहला, जो शायद सबसे ज्यादा दोहराया जाता है, प्रकृति दृश्यमान आत्मा है, आत्मा अदृश्य प्रकृति है।
तत्व दर्शन का सार है, बाहर जो दुनिया दिख रही है और अंदर जो चेतना महसूस हो रही है वो असल में एक ही चीज के दो रूप हैं।
दूसरा, कला पर उनका वो मशहूर वाक्य, सामान्य रूप से वास्तुकला जमा हुआ संगीत है।
कितना काव्यात्मक है, ये दिखाता है कि कैसे ब्रह्मांड की जो बुनियादी लय और संरचना है वो अलग अलग कलाओं में अलग अलग तरह से प्रकट होती है। एक इमारत के अनुपात और एक संगीत की धुन, दोनों कहीं ना कहीं एक गहरे सिद्धांत से जुड़े हैं।
और स्वतंत्रता पर उनका वो शुरुआती लेकिन बहुत दमदार कथन, समस्त दर्शन का आदि और अंत है स्वतंत्रता।
हाँ, ये उनके फिलोसॉफिकल लेटर से है। ये दिखाता है कि मानवीय स्वतंत्रता को समझना शुरू से ही उनके लिए दर्शन का सबसे बड़ा लक्ष्य था और यही विषय बाद में उनकी 1809 की महान रचना का केंद्र बना।
और प्रकृति पर वो खूबसूरत पंक्ति जिसे हम प्रकृति कहते हैं, वह एक रहस्यमयी और अद्भुत लिपि में बंधी हुई कविता है।
ये प्रकृति के प्रति उनके रोमांटिक नजरिए को कितनी खूबसूरती से बयां करता है। प्रकृति सिर्फ विश्लेषण करने की चीज नहीं है, वो महसूस करने, सराहने और जिसमें गहरे अर्थ छिपे हों ऐसी चीज है।
जाहिर है, इतने मौलिक और लगातार बदलते विचारों वाले दार्शनिक की आलोचनाएं भी जमकर हुई होंगी। हेगेल वाली आलोचना तो हमने सुनी, और क्या कमजोरियां मानी जाती हैं उनकी?
अक्सर उन पर यह आरोप लगता रहा कि वो व्यवस्थित नहीं थे, उनके विचारों में असंगति थी क्योंकि वो अपने सिस्टम को बार बार बदलते रहते थे। कुछ आलोचकों ने तो उन्हें दार्शनिक से ज्यादा एक दार्शनिक कवि माना।
अच्छा,
उनके बाद के दौर में जो वो मिथकों और धर्मशास्त्र की ओर मुड़े उसे कई लोगों ने दर्शन के तर्कसंगत रास्ते से भटकना माना। और हाँ, उनकी भाषा भी अक्सर काफी जटिल और घनी होती थी जिससे उन्हें समझना हमेशा आसान नहीं रहा।
फिर भी उनकी जिंदगी दिलचस्प किस्सों से भरी पड़ी है। वो ट्यूबिंगन तिकड़ी वाली बात,
हाँ, वो स्वतंत्रता का पेड़ लगाना या उनकी वो असाधारण प्रतिभा के किस्से, कैसे बचपन में ही इतनी भाषाएं सीख ली, और कैरोलिन श्लेगल से उनका विवाह जो जमाने के हिसाब से काफी साहसिक कदम था,
और बर्लिन में उनके वो लेक्चर जहां भविष्य के इतने बड़े बड़े नाम उन्हें सुनने के लिए मौजूद थी, किर्कीगॉर्ड, बाकुनिन, एंगल्स।
बिल्कुल, जरा कल्पना कीजिए उस लेक्चर हॉल की, सब बैठे हैं और शेलिंग हेगेलियन व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। भले ही वो लेक्चर वो वैचारिक क्रांति ना ला पाए हों जिसकी शेलिंग को उम्मीद थी, पर किर्केगार्ड जैसे लोगों पर उनका असर बहुत गहरा पड़ा।
लेकिन ये भी सुनने में आता है कि जीवन के आखिरी सालों में वो काफी अकेले और रहस्यमय से हो गए थे, उनके लेक्चर समझना मुश्किल हो गया था।
हाँ, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं, लगता है जैसे वो अपनी ही दुनिया में ज्यादा रहने लगे थे, उनके लेक्चर समझना मुश्किल और निराशाजनक होते जा रहे थे, ऐसा कुछ छात्रों ने लिखा है।
तो अंत में अगर हम सोचें कि शेलिंग हमें क्या सोचने के लिए छोड़ जाते हैं तो क्या कहेंगे?
मुझे लगता है वो हमें उन चीजों पर दोबारा सोचने को मजबूर करते हैं जिन्हें हम अक्सर अलग अलग डिब्बों में बंद कर देते हैं। मन और पदार्थ, व्यक्ति और दुनिया, तर्क और भावना, रचनात्मकता और नियम। वो हमें याद दिलाते हैं कि हकीकत शायद इन विभाजनों से कहीं ज्यादा पेचीदा है, ज्यादा गतिशील है और हाँ, ज्यादा रहस्यमयी भी।
वो हमें जैसे प्रकृति की, कला की, मिथकों की आवाज सुनने के लिए उकसाते हैं ताकि हम दुनिया की पूरी तस्वीर देख सकें, न कि सिर्फ उसका एक तार्किक ढांचा।
बिल्कुल। और शायद सबसे बड़ा सवाल जो वो आज हमारे लिए छोड़ जाते हैं वो ये है, अगर हम प्रकृति को सिर्फ इस्तेमाल करने लायक एक संसाधन ना माने बल्कि शेलिंग की तरह उसे एक दृश्यमान आत्मा के रूप में देखें, तो हमारे जीने का तरीका, हमारे सोचने का तरीका, हमारे काम करने का तरीका, वो कैसे बदल सकता है? मुझे लगता है इस सवाल में आज के लिए बहुत गहरे सबक छिपे हैं।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नए विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए कत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।